તારીખ 20/8/1994 શ્રી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશક ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 103.
સાતમા અધિકાર. જૈના ભાષી મિથ્યા દ્રષ્ટિ કા સ્વરૂપ કહેતે હૈ, ઉસમેં નિશ્ચય કા આભાષી, વ્યવહાર કા આભાષી ઓર દોનો કા આભાષી મેના ઉભયાભાષી, તીન પ્રકાર કે મિથ્યા દ્રષ્ટિ જો જૈન હોતે હુએ ભી ધર્મ કો પ્રાપ્ત નહીં કર સકતે હૈ, ઇસલિયે उसका स्वरूप दिखाया कैसे ऐसी भूल मिट जाए, निकल जाए. उभयाभाषी का स्वरूप चलता है. फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार ने और सत्यार्थ है तो इसका उपदेश जिनागम में किस लिए दिया? एक निश्चय नहीं का निरूपण करना था. क्या बोले कि भगवान की वाणी में दोनों नई का निरूपण आया है और पंडित जी ने स्पष्टीकरण ऐसा दिया कि दोनों नई की बात आई है, उसमें निश्चय नहीं अंगीकार करने योग्य है और व्यवहार नहीं है वो निषेध करने योग्य है. तो जो निषेध करने योग्य थे उसकी बात क्यों किया? उसकी बात ही नहीं करना था. एक अंगीकार करने योग्य बात है वही कहनी थी, तो कोई गलती तो नहीं हो जाए. स्पष्टीकरण तो दोनों प्रकार का देना आवश्यक है. हम भी हमारे मकान के जमीन के दस्तावेज डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो हमारा है और पड़ोस वालों का नहीं है, ऐसा नास्ते जोड़ते कि नहीं जोड़ते? यदि हम नहीं लिखते कि हमारा ही है, इतना ही लिखते तो पड़ोस वाला कभी दावा कर सकता कि आपका भी है और हमारा भी उसमें हिस्सा है, आपने निषेध तो नहीं किया, इसलिए हमारा है, उसके सब वो सबूत है. तो विधि निषेध दोनों करना आवश्यक है, इसलिए कि इससे ही वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होता है और वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होने से कोई गलती नहीं रहती. वो जरूरी है. समाधान के ऐसा ही तर्क समयसार में भी किया है, ऐसा तर्क समयसार में भी किया है. वहां यह उत्तर दिया है, आठवीं गाथा लिया है. आठवीं गाथा का आधार जो समयसार का बहुत आधार देते हैं. जोहनवी सक्कमण जो अन्नज भासुं वीणाऊ गाहे हूं तो व्यवहारेण वीणा परमथु वही क्षणम असक्कम. अर्थ जिस प्रकार अनार्य अर्थात मलेच्छ को मलेच्छ भाषा बिना अर्थ ग्रहण कराने में कोई समर्थ नहीं है. जो मलेच्छ है उसको आर्य भाषा में लेक्चर दे दो वो कुछ समझेगा नहीं, उसको उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा. उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है. जो जीव अज्ञानी है उसको तो व्यवहार की भाषा में ही परमार्थ का उपदेश देना यही कार्यकारी होता है, उसके सिवा उसको उपदेश देना ही बेकार है, यानी अशक्य, वो कुछ समझने वाला नहीं है. इसलिए व्यवहार का उपदेश है, इसलिए व्यवहार का उपदेश है. जैसे कि वो दोष में खड़ा है तो निश्चय के साथ व्यवहार का कितना दोष नाश होता है, किस भूमिका में कितना दोष चला जाता है, किस भूमिका में कितना रहता है, वहाँ से उसको समझाना पड़ता है, वो जहाँ खड़ा है वहाँ से उसको उपदेश देना पड़ता है। उसके बहुत स्तर है, उसके अलग अलग बहुत स्तर है, उसकी भी चर्चा टोडन मजी यहाँ करेंगे। तथा इसी सूत्र की ऐसा कहा है कि व्यवहार नयो न अनुसर्तव्य, वो आठवीं गाथा की टीका में आखिर में वो बात लिया है अमृतचंद्राचार्य देव ने कि व्यवहार बिना परमार्थ का उपदेश हो ही नहीं सकता। फिर भी हम यहाँ कहते हैं कि ये व्यवहार है अनुसरण करने योग्य नहीं है। इसका अर्थ है कि इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं। किसको व्यवहार द्वारा क्यों उपदेश देते हैं, व्यवहार द्वारा उपदेश देने का हेतु क्या है, कि निश्चय का अंगीकार कराने का हेतु से हम व्यवहार का उपदेश देते हैं। व्यवहार को अंगीकार कराने के हेतु से हम व्यवहार का उपदेश नहीं देते हैं, परंतु व्यवहार नहीं है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। तो जहां जहां वो बात आई है वहां स्पष्टीकरण भी आचार्यों ने दिया है, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं बताई है। ध्यान नहीं जाए तो हमारी गलती है, बाकी बात तो हर जगह साफ आई है। वो हम समय सार पड़े इसके पहले हमको एक मुमुक्षु मिल गए थे, समय सार मत पढ़ना, उनको पता चला कि सोनगढ़ जाने लगे हैं, तो सोनगढ़ वाले तो समय सार पढ़ते हैं, तो समय सार मत पढ़ना, क्यों निश्चयाभासी हो जाओगे, वहाँ बहुत हो गए हैं, तुम भी हो जाओगे। अच्छा, भड़काए थे हमने तो पढ़ा, पढ़ करके हम उसके पास गए, समयसार पढ़ने में निश्चयाभासी हो जाए ऐसा कुछ नहीं हमको लगता है। देखो ऐसा ऐसा स्पष्टीकरण शुरू से ही आया है, शुरू से सब प्रकार का स्पष्टीकरण आया है, उसमें कोई ऐसा नहीं लगता कि निश्चयाभासी हो जाए। कोई अपनी योग्यता से हो जाए अलग बात है, लेकिन समयसार पढ़ने से हो जाए वो बात तो नहीं दिखती। और सत्शास्त्र में ऐसा निमित्त तत्व भी नहीं है, ज्ञानी की वाणी हो, आचार्य देव की वाणी हो, या जिनेंद्र देव की वाणी हो, किसी में किसी का अकल्याण हो ऐसा कोई निमित्त तत्व इसमें नहीं है। दूसरे का कल्याण होने का निमित्त तत्व है, तो बहुत से जीव का कल्याण हो गया उसके निमित्त से। तो एक ही भाषा में कल्याण का भी निमित्त होवे और अकल्याण का भी निमित्त होवे, ये बात तो कैसे हो सकती है,
नहीं हो सकता।
ये बात तो हो सकती नहीं है। कोई तर्क करेगा कि किसी को ऐसा होता है इसका क्या करेंगे, हाँ किसी को होता है तो इसका उपादान से होता है, उसका निमित्त कारण लेना नहीं चाहिए, वो इसका उपादान लेना उस जगह पे, उसका निमित्त नहीं लेना वहां, क्योंकि ऐसा निमित्त तो वहां है ही नहीं इसलिए। और विरुद्ध निमित्त तत्व हो सकता नहीं है। धर्मास्त्री का चलने में भी निमित्त होवे और स्थिर रहने में भी निमित्त हुए ऐसा नहीं बीता, स्थिर रहने में और धर्मास्त्री का निमित्त होता है, ऐसी बात है। अब उसके सामने प्रश्न करते हैं, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, सो कहिए। आपने उतना स्पष्टीकरण दिया तो और थोड़ा स्पष्टीकरण दे दीजिए कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता है, वो किस तरह से नहीं होता, ऐसा कौन कारण है, किस प्रकार की परिस्थिति को देख करके आप ऐसे बोलते हो, उसमें किसके पीछे क्या कारण है, एक बात। और व्यवहार ने अंगीकार नहीं करना तो कैसे नहीं करना, वो भी बताइए साथ साथ। समाधान, निश्चय से तो ये जिज्ञासा है, ये जो प्रश्न है वो जिज्ञासा के रूप में है। दो प्रकार का समाधान मिलता है, एक प्रश्न होता है उसमें आशंका होती है, और एक प्रश्न ऐसा होता है कि जिसमें जिज्ञासा होती है, विशेष रूप से स्पष्टीकरण मांगने का वो चाहते हैं प्रश्न करने वाले, उसको जिज्ञासा कहते हैं, और आशंका होती है उसको प्रश्न कहते हैं। और ऐसे प्रश्न कभी नहीं होने चाहिए कि हम ऐसा मानते हैं वो आप सही है ऐसा कर दो, हमारी बात सच्चा है ऐसा आप बता दो, ऐसा प्रश्न तो कभी किसी ने किसी को करना नहीं चाहिए। वो कन्फर्मेटिव बात है कि हमारी बात को आप कन्फर्म करो, उस पर मोहर लगा दो कि आपने हमने जो माना है वही आप कहते हैं, ऐसा प्रश्न कभी रखना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें छिपा हुआ दोष क्या है कि उसमें वो बात छिपी हुई है कि हमारी मान्यता को हम पुष्ट करना चाहते हैं और हमको आपसे कोई समझने की जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा का अभाव उसमें है, पहले से हमने वो पक्का कर लिया है, तो हमारा अपेक्षित उत्तर हमको मिले क्या, तो पहले से वो अपेक्षा रख लेते हैं हम अपने उत्तर की, उसमें उसको जिज्ञासा नहीं रहते, जिज्ञासा का अभाव हो जाता है। जिज्ञासा का अभाव होने से आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है, और फिर तो दर्शन वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब संतुष्ट हो गया कि अच्छा हम मानते हैं वो बराबर है, हम जानते हैं वो बराबर है, तो संतुष्ट हो जाएगा तो दर्शन वो बढ़ेगा, वो भी होगा। फिर तो वहां तक उसकी बुद्धि ही काम करती है कि हम मानते हैं उसका शास्त्र का आधार भी हमारे पास है, तो शास्त्र अपना अभिप्राय पुष्ट करने के लिए नहीं है, शास्त्रकार का जो अभिप्राय है ऐसा अभिप्राय गढ़ने के लिए हम शास्त्र स्वाध्याय है क्या। फिर से कि हमारा अभिप्राय जो बन गया है उसको पुष्ट करने के लिए हम अनेक शास्त्र पढ़े और उसमें से ढूंढ ढूंढ कर करके खोज करके हमारा अभिप्राय को पुष्ट करें, वो तो शास्त्र स्वाध्याय की पद्धति बिल्कुल गलत है। शास्त्रकार का जहाँ जो भी अभिप्राय है उसी के अनुकूल हमारा अभिप्राय नहीं है तो उसको ठीक करना चाहिए, और है तो मिलान कर लेना चाहिए, इस तरह से शास्त्र स्वाध्याय करना चाहिए। मिलान तो करना ही पड़ेगा कि हम भिन्न पढ़ते हैं या मेल खाता है, मेल खाता है तो वहाँ लगेगा कि ठीक है अपना जो रास्ता है उसमें हम उल्टा नहीं चल रहे, हम अब कैसे आगे बढ़े वो जिज्ञासा वहाँ से चलना रखना चाहिए,
वैसे भूल नहीं होती लेकिन आगे बढ़ने की।
हाँ, वो तो यथार्थता में तो वही होता है, यथार्थता में मिलान होता है और फिर यहाँ से एक कदम कैसे आगे बढ़ने की जिज्ञासा भी वहाँ ही चालू हो जाती है, ऐसे शास्त्र स्वाध्याय होता है। समाधान, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। यहाँ से परद्रव्य से चालू किया व्यवहार कि परद्रव्य से आत्मा सर्वथा भिन्न है और अपने भावों से, अपने स्वभावों से, गुण पर्यायों से वो स्वयं सिद्ध वस्तु है, बनी बनाई वस्तु है, उसको नहीं बनानी नहीं है। उसे जो नहीं पहचानते, जो अपने स्वभाव को अपने भावों को नहीं पहचानते, नहीं देख सकते, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आप कहते हैं कि अपने परिणाम को देखो, लेकिन हम तो किस तरह से देखना वही नहीं जानते, हमारे परिणाम को किस तरह से देखना वो हम नहीं जानते, हमको आता नहीं है, हमको भी सीखे नहीं, ऐसा हमने किया नहीं इसलिए आता नहीं है, तो उनको परदृश्य समझाने में आता है, जैसे कोई देव गुरु शास्त्र का अनजाने में अभिनय करता है क्या, पर उसको अपना परिणाम का पता नहीं चलता है कि हमने कैसे अभिनय किया, तो उसको परदृश्य समझाना पड़ता है कि ये आपका परिणाम को आपको कितना भयंकर है उसका मालूम नहीं है, लेकिन इसका फल निगोद आएगा। क्या आएगा?
निगोद आएगा फल।
इसका फल आएगा वो
निगोद
आएगा। अगर क्रोध से विरोध करोगे तो नारकी में जाकर के निगोद में जाएगा, और क्रोध नहीं करेंगे और मायाचारी से निषेध करेंगे तो निगोद में जाएगा, तो नर्क में जाने का कम होता है, पशुगति में जा करके फिर निगोद में चला जाएगा। दो प्रकार के विरोध होते हैं, एक ठंडा होता है एक गर्म होता है। कोई लड़ाई करता है तो वो पहले नरक में जाता है फिर निगोद में जाता है। कोई लड़ाई नहीं करता है लेकिन चालाकी करता है क्या, लेकिन विरोध बराबर करता है, ऐसा भी होता है तो मायाचारी करता है तो तिरिंज गति में जा करके फिर निगोद में चला जाता है। तो उसका परिणाम को उसको पता नहीं है अपना परिणाम को, तो परद्रव्य से समझाने में आता है उसको कि देखो तुमको यही पर्याय हो जाएगी, तुम्हारी मनुष्य पर्याय बीत जाएगी और बाद में ऐसी पर्याय हो जाएगी। तो उसको फल जो आप उद्गल में आता है अन्य भाव में आता है वो अभी दिखाना पड़ता है। तो अन्य द्रव्य से समझाने का भी उपदेश देने का भी व्यवहार है, वो इस भूमिका में योग्य है, वरना वो समझेगा ही नहीं, ऐसी बात है।
लौकिक में तो शीत युद्ध को ज्यादा खतरनाक मानते हैं, शीत युद्ध को ज्यादा खतरनाक मानते हैं।
किसको?
ठंडा युद्ध को।
हाँ, ठंडा युद्ध को ज्यादा खतरनाक मानते हैं, तो है ही। गर्म युद्ध का तो क्या है, निबिड़ा आ जाता है, ठंडा युद्ध का निबिड़ा नहीं आता है, वो लंबे काल तक चलता है। और गर्म युद्ध में क्या है कि ऊपर के परिणाम है वो शांत हो जाते हैं, और ये अंदर के परिणाम शांत नहीं होते, शल्य रह जाता है उसमें, इससे मेरा नहीं पटती है, इससे नहीं पटती है, तो हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे, वो चालू रहेगा, उसका बहुत नुकसान का कारण है। जो अपने भावों को नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहे तब तो वो समझ नहीं पाए, उनको यही कहते रहो तो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको व्यवहार नहीं से शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता से द्वारा नर नारक पृथ्वी के आदि रूप जीव के विशेष किए, उसका भेद विशेष मैंने अनेक अनेक प्रकार कहे, तो मनुष्य जीव है नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई कि देखो एक इंद्रिय हो जाएगा, निगोद में जाएगा तो एक इंद्रिय हो जाएगा, नरक में जाएगा तो पंचेंद्रिय रहेगा, फिर भी पीड़ा बहुत भोगनी पड़ेगी, शरीर से समझाना पड़ता है। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके नान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। क्या है? मिथ्यात्व अवस्था में शरीर रूप में हूँ ऐसा माना है। क्या माना है?
शरीर रूप में हूँ।
मैं शरीर रूप हूँ तो शरीर तो कुछ जानता नहीं, भूख किसको लगती है, जीव को लगती है कि शरीर को लगती है? शरीर को लगती है, जीव को भूख, लेकिन मानता है कि मुझे लगी। असाता की पीड़ा किसको होती है? शरीर को होती है, वो पर्याय शरीर की है। जठराग्नि तेज हुई वो पर्याय शरीर की है, पीड़ा की असाता वेदनी हुई वो शरीर की अवस्था है, जड़ की अवस्था है, जीव की अवस्था
नहीं है।
लेकिन मालूम पड़ता है जीव को उसका परिणमन मालूम पड़ता है तो ज्ञेय को ज्ञान में मिक्स 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 कर देते हैं, मिला देते, एकत्व कर ले देते हैं कि मुझे हुआ, ये भूख मुझे लगी, ये पीड़ा मुझे हुई, ऐसा। वास्तव में जीव को तो ज्ञान होता है और कुछ नहीं होता है। तो फिर वहां कहना पड़ता है कि देख, जानने वाला है वो जीव है, असाता जिसको हुई है वो जीव नहीं है। असाता की सत्ता में ज्ञान का अभाव है, भेद ज्ञान ऐसे करेंगे। असाता की सत्ता में ज्ञान का अभाव है, ज्ञान की सत्ता में असाता का अभाव है। देख, जरा ध्यान से गौर से देख तो मालूम पड़ जाएगा कि दोनों सत्ता भिन्न भिन्न है, एक सत्ता नहीं है। तो अंदर में जाना पड़ेगा कि क्या बात है, जानने वाला तो है, पीड़ा है वो जानने में आती है, लेकिन पीड़ा जानने में पीड़ा नहीं, पीड़ा में जानना नहीं, वो दोनों बात भिन्न भिन्न है, दोनों पर्याय भिन्न भिन्न है। तो ऐसा ज्ञान दर्शन जिसमें जानने वाला है ऐसा जीव है, ऐसा करके ज्ञान दर्शन का भेद उग जाया। जीव में तो ऐसे अनंत गुण भेद रूप से रहा है, लेकिन ज्ञान दर्शन का भेद पार करके उसको समझाया, क्यों ऐसा किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया, कि उनको तो परद्रव्य से एकत्व था, शरीर से एकत्व था। तो कहते हैं कि शरीर से भिन्न हो, अपने परिणामों से भिन्न हो, चाहे विकारी हो चाहे अविकारी हो। फिर कहेंगे कि विकारी परिणाम भिन्न है, अविकारी परिणाम भिन्न है, तो राग भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। तो यहाँ आया तो कहेंगे कि ज्ञान भिन्न है लेकिन त्रिकाली इससे भी भिन्न है, वहां तक ले जाएगा। तो अलग अलग स्तर का उपदेश हुआ कि नहीं हुआ, परद्रव्य से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की शुद्ध पर्याय से भी भिन्न, ऐसे। तो अलग अलग स्तर का उपदेश योग्यता देख करके वो ऐसा उपदेश देने में आता है। अब जो परद्रव्य में एकत्व करता है उसको कहेंगे तू शुद्ध पर्याय से भिन्न हो, तो शुद्ध पर्याय तो इसके पास है नहीं, क्या समझेगा। पर कोई पर्याय का नाम ही नहीं लिए, गुण भेद का नाम लिए, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो, परम ब्रह्म हो, क्या समझेगा परम ब्रह्म में, ये कुछ नहीं समझेगा। और वो भी व्यवहार हो गया, वो परम ब्रह्म भी व्यवहार हो गया कि एक रूप रहना ब्रह्म मैंने, फेरफार बिना ध्रुव रहना उसको ब्रह्म कहते हैं। तो वो भी एक धर्म है, ऐसे तो अनंत धर्म है वस्तु में।
हर वचन करुणा से भरा हुआ है, हर वचन करुणा से भरा हुआ
वो तो है ही, वो भी वचन निकले हैं तो करुणा से तो निकले हैं। श्री गुरु के जितने भी वचन निकले हैं वो करुणा से तो निकले हैं। हाँ, आत्मा ज्ञान मात्र है ऐसा कहना भी व्यवहार है। देखो, ऐसा कहना भी व्यवहार है। वो आता है ना अपने खंडस्टिका में, वो बात लिया है, कोई कितना भी क्या, कोई कितना भी बुद्धिमान हो लेकिन भेद के द्वारा ही अभेद को समझेगा, इसके सिवा वो अभेद को समझ सकता
नहीं है।
देखें कलष्टिका है, ये भी कलष्टिका। पांचवा कलश में वो बात लिया है, तो आठवा अभी जो आधार लिया ना गाथा का, उसी का ही कलश है वो। राजमिल जी ने और स्पष्टीकरण अच्छा दिया है, कोई कितना भी साधिक हो ऐसा करके लिखा है, क्या जितना भी कथन है वो व्यवहार है, व्यवहार नहीं मतलब जितना भी कथन है वो व्यवहार है, क्योंकि जीव वस्तु निर्विकल्प है। और कितना क्या निर्विकल्प है तो ज्ञान गोचर है, निर्विकल्प शब्द गोचर नहीं होता। वही वस्तु को कहना चाहे तब ऐसा ही कहने में आता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र जो है वो जीव है। जो कोई बहुत साधिक मैंने अधिक बुद्धिमान हो, बहुत तेज बुद्धि वाला हो, कितना भी बुद्धिमान हो, तो भी ऐसा ही कहना पड़े। इसके बिना वो जीव का स्वरूप समझ सकता नहीं है। इतना कहने का नाम व्यवहार है। तो फिर खुद ने शंका उठाई कि वस्तु निर्विकल्प है, आपने भेद डाल करके विकल्प उपजाया, वो तो अयोग्य दिखता है, हमको योग्य नहीं लगा वो बात। और निर्भेद वस्तु में भेद उपजा करके बात कहते हो, वो योग्य नहीं लगता है, अयुक्त है। उसका समाधान है कि ऐसे इस प्रकार से व्यवहार नहीं है, वो हस्तावलंब है। क्या मूल शब्द पड़ा है अमृतचंद्र आचार्य देवना, कि हस्तावलंब हस्तावलंब है। और हस्तावलंब के आगे एक शब्द और रखा है कि हंत हस्तावलंब। हंत मैंने खेद है कि हमको भेद पाड़ना पड़ता है। हस्तावलंब कहते ही खेद प्रकट करते हैं कि इतना भेद हमको करना पड़ता है। हम तो अभेद को अभेद भाव से अनुभव करते हैं, लेकिन समझाने में भेद पाड़ना वो एक हमारे लिए दुख की बात है, खेद की बात है, ऐसा हंत शब्द लिखा है। कोई भी समर्थ कितना भी हो, भेद पाड़े बिना भेद को समझाया जाता नहीं, समझा सकते भी नहीं है। जैसे कोई नीचे गिर गया हो, उसको कोई उठाता है, हाथ का सहारा दे करके उठाता है, उसी प्रकार गुण गुणी रूप भेद कथन अभेद का ज्ञान उपजाने का एक अंग है। कारण नहीं बोले, निमित्त नहीं बोले, अंग शब्द रखा है, क्योंकि वो अनिवार्य है, इसलिए उसको अंग बोला है। जैसे जीव का लक्षण चेतना, अंत तदपि ऐसा न किंचित, जो यद्यपि व्यवहार नहीं हस्तावलंब है तो भी कुछ नहीं है, नोंद करने से वो झूठा है। वो कुछ नहीं है, नोंद करने से वो एक वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। ऐसा नोट कर लेना, नोंद कर लेना कि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है। ત્યારે અસાતામાં જ્ઞાન ની સત્તા નથી, શું પરસેવો ઉતરી જાય એવું છે, અનુભવ કરવા જાય, પુરુષાર્થ માંગે છે એ વખતે। જ્ઞાન નો સ્વયંમાં અનુભવ કરવાનો પુરુષાર્થ માંગે છે, અને રાગાદી અસાતાની દ્વેષની, એ દ્વેષની પર્યાય છે। અસાતા અચ્છી નહીં લગતી, વો દ્વેષ કી પર્યાય હૈ, ઉસસે ભી જ્ઞાન ભિન્ન હૈ, એસા લેના પડતા હૈ, તબ અસાતા સે ભિન્નતા હોતી હૈ। तब पुरुषार्थ चाहिए, तब पुरुषार्थ चाहिए, और वो प्रयोग असाता के काल में करना चाहिए। ज्ञानी असाता नहीं आती तो खड़ी कर देते हैं, वो उपवास क्यों करते हैं, असाता होती है, वो प्रयोग है इसका, वो कोई नकल करने की चीज नहीं है, किंतु भेद ज्ञान का प्रयोग करने की चीज है। तो लाते हैं, उदीर्णा करके लाते हैं, उदय नहीं आता है तो उदीर्णा कर लेते हैं, लेकिन असाता चाहिए। क्या असाता से घबराना तो नहीं, लेकिन असाता चाहिए प्रयोग करने के लिए। क्योंकि साता में तो तुमको पता ही नहीं चलेगा विज्ञान करने का कि साता के पर्याय भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। तो पाप करे दूसरा प्रयोग में पाप होता है, प्रयोग अंदर में करे तो परमार्थ लाभ होगा और बाहर में टीवी देखने को, ताश खेलने को, सो जाने में, नींद लेने में चला जाएगा तो पाप बंद होगा। इसके बजाय तो उपवास नहीं करना अच्छा है। ये उपवास है ही नहीं, वो लंघन है, लंघन उपवास
नहीं है,
है ही नहीं।
उपवास
बोलते हैं उपवास। सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। क्या अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद कहे, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। उसके ऊपर का एक पंक्ति रहा है, पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। यहाँ व्यवहार नहीं से नर नारक आदि पर्याय को जीव कहा, सो पर्याय जीव को नहीं मान लेना। ऐसे पर्याय जीव को जीव की जीव स्वरूप ऐसा नहीं मान लेना। नहीं, ऊपर से लेना चाहिए, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके वहां से लेना है, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए भेद बताए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जिन है, जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव को पहचान कराई। तथा निश्चय से वितराग भाव मोक्ष मार्ग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र तीनों में राग का अभाव है। उसे जो नहीं पहचानते हैं उनको ऐसे ही कहते हैं तो वे समझ नहीं पाए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को नहीं पहचानते हैं तो जो इसके जो व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम है उसके द्वारा उसको समझाते हैं, तब उनको व्यवहार नहीं से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा वृत्शील संयम आदि रूप वितराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वितराग भाव की पहचान हुई। क्या कहा, देखो कि कोई निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र को नहीं पहचानता है और तो वितरागी अरूपी जीव के परिणाम है, करे भी क्या समझाने के लिए, तो दूसरा उपाय तो है ही नहीं। तो फिर उनको कहेंगे कि देखो भाई, जो तत्व श्रद्धान ज्ञान होता है, तत्व का श्रद्धान ज्ञान होता है उसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं, लेकिन वो तो विकल्प है व्यवहार के, वो विकल्प है। तो कोई ऐसे मान लेते कि हमको तत्व के नव तत्व की श्रद्धा हो गई इसीलिए हमारा ज्ञान श्रद्धान सम्यक हो गया, तो ऐसी बात
नहीं
है। लेकिन जिसको सच्चा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है उनके विकल्प ऐसे होते हैं, उनके विकल्प तत्व श्रद्धान के ऐसे यथार्थ होते हैं। भीतर में निश्चय श्रद्धा ज्ञान पड़ा है तो बाहर में उसके अनुकूल यथार्थ उनके विकल्प और भाषा आएगी, विकल्प भी यथार्थ होंगे और उसका निरूपण भी यथार्थ होगा। तो जो परिणाम को नहीं समझते उनको राग से और कथन से समझाया जाता है। उनको व्यवहार नहीं से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने के सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयमवादी रूप वितराग भाव दिखाएंगे। चारित्र के भाव कैसे दिखाएंगे कि देखो उसको भी व्रत है, संयम है, बराबर शील को पालता है, देखो उनको उस प्रकार का राग नहीं रहा, राग का अभाव दिखाया। ज्ञानी के राग का अभाव हुआ उससे जो व्रतादि का शुभ विकल्प है और अनेक प्रकार के अशुभ भाव का अभाव हो गया है, तो राग से जो अशुभ का अभाव हुआ और शुभ राग हुआ, वहां से वितरागता दिखाई, अभाव से वितरागता दिखाई है वहां, तो मान लिया कि वो राग है, वो चारित्र है। ऐसा नहीं है, जो जिस राग का अभाव हुआ, ऐसा जो वितराग भाव का सद्भाव, वही चारित्र है। ऐसी बात है, भूल कहाँ होती है कि जिस प्रकार का राग का अभाव, बुद्धिपूर्वक का राग उत्पन्न नहीं होगा, उसको जो चारित्र कहते हैं वो सच्चा चारित्र वितराग भाव रूप है। लेकिन वो अशुभ का अभाव हुआ पर शुभ का वहां सद्भाव दिखता है, तो शुभ भाव को वो चारित्र मान लेता है, तो भूल हो जाती है। दिखाने का तो कोई रास्ता है नहीं, तो ऐसे दिखाना पड़ता है। अस्तावलंब लिया है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अभेद वस्तु दिखाने से, बोलने से ही भेद हो जाता है। अभेद वस्तु को बोलने में ही भेद हो जाता है। अभेद को अभेद कहो तो भी एक भेद नहीं, ऐसा अभेद ऐसा भेद हो जाता है। इसलिए तो अमृतचंद्र आचार्य ने 26 कलश लिखे हैं, मैं शुद्ध भी नहीं अशुद्ध भी नहीं, खलु चिच्चि देव, मैं भेद भी नहीं अभेद भी नहीं, एक भी नहीं अनेक भी नहीं, अस्ति भी नहीं नास्ति भी नहीं, तो कैसा हूं कि अनुभव स्वरूप हो, ऐसा भेद भी नहीं अभेद भी नहीं अनुभव स्वरूप हो, वो बात लिया है। कोई डूबता है उसको हाथ का सहारा दे पर वो गला पकड़े तो दोनों डूबेगा। ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन घबराहट में ऐसा हो जाता है। कोई डूबता है तो बचने के लिए कोई उसको हाथ का सहारा देता है तो उसको गला पकड़ लेता है या उसमें बाहु में ले लेता है, तो उसका तैरना मट जाएगा तो दोनों डूब जाएंगे। ऐसा नहीं लेना है। ऐसा सहारा नहीं लेना है, तिरने के लिए सहारा लेना है, डूबने के लिए नहीं। ऐसी बात है। सहारा कैसे लेना, उसमें भी भूल हो जाए तो डूब जाएगा। यहाँ तो तारक नहीं डूबेगा, वहां तो यहाँ तो दृष्टांत तो एक पक्ष लागू होता है। तो क्या कहा वहां कि श्रद्धा ज्ञान को तत्वार श्रद्धान ज्ञान पूर्वक समझाया, और चारित्र में परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा रतशील संयमवादी रूप वितराग भाव के विशेष बताए, तो परद्रव्य से दिखाए। देखो आज वो खाना नहीं खाएगा, उनको दीक्षा अंगीकार किया है तो अहिंसा आदि जो महाव्रत है उसमें हिंसा की कोई क्रिया, पाप की कोई क्रिया दिखेगी नहीं। तो इस प्रकार के विकल्प का पंचम गुण स्थान में भी 11 प्रतिमा में उसी प्रकार के बुद्धि पूर्वक का विकल्प का निषेध दिखाया है, अभाव दिखाया है, पर उसके बदले में शुभराग का सद्भाव दिखने में आता है, तो शुभराग को चारित्र मान लेता है। ऐसी बात नहीं है, वितराग भाव चारित्र है, वो दिखाने का वहां तरीका है। लेकिन यथार्थ में जिसको ज्ञान होता है उसको तो वितराग भाव की पहचान होती है, और जिसको नहीं होती वो गलती करता है, होती है तो पहचान आ जाती है उसको। वितराग भाव की पहचान आती है तो आत्मा की पहचान भी आ जाती है, और आत्मा की पहचान होती है तो उनको अनुभव होकर के मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। इस प्रकार
ऐसा होता है,
अनुभव में ऐसा नहीं है, देखो हम वो आम खरीदने को जाता है आम के सीजन में, तो जिसको आम की पहचान नहीं है वो क्या देखेगा कि पकी हुई आम तो पीली होती है और जो कच्ची होती है वो नीली होती है, लीली होती है, ग्रीन। तो ऐसा करके ले लेवे तो खट्टी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि भाई अकेला उसका वर्ण रंग नहीं देखने का है, हमको प्रयोजन तो रस का है, इसलिए रस को चख लेना। क्या?
हाँ जी,
रस को चख लेना और फिर उसको खरीद करना है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि तुमको व्यवहार से दिखाते हैं, लेकिन निश्चय को समझ लेना, निश्चय को पहचान लेना, परख कर लेना निश्चय के, तो फिर पता चलेगा कि हमारा आत्मा कैसा है, अनुभव कैसे होता है। बाहर में भी ऐसा होता है, कोई सोने की परख सीखता है या हीरे की परख सीखता है तो बार बार उसको देखता है, बार बार उसको देखता है, सोने को कसौटी में लगा के देखता है, हीरा को आई ग्लास से देखता है, तो उसमें चमक है वो हीरा का खास गुण है, और भी कई बातें देखनी पड़ती है लेकिन चमक को खास देखते हैं, उस सोना में भी चमक को देखते हैं। अकेले पीलापन तो को देखे तो ऐसे दूसरी भी धातु होती है पीलापन, पीला वाली, तो पित्तल को भी सोना समझ लेगा। तो अबर गुजराती माँ कहे बच्चे पीलू एटलू सोनू नहीं, उजलू एटलू दूध नहीं। बाहर से परख नहीं होती है, परख में तो जब परख होती है तो कुछ न कुछ लक्षण से होती है, लक्षण उसका भेद है, और जब परख आ जाती है तो पूरी अभेद वस्तु पहचानने में आती है, उसमें भेद पड़ता नहीं है कि भाई सोना मैंने सोना, पीला उतना सोना वो बात नहीं है, सोना मैंने सोना, अभेद भाव से वो परखने में आता है, भेद से परखने में साधन है, अस्तावलम है भेद, लेकिन परख अभेद की होती है। ऐसे यहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र उसका लक्षण दिखाया, लेकिन परख आएगी आत्मा की पहचान आएगी तो अभेद आत्मा की पहचान आएगी, ऐसी बात है। भेद की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर समझाने के लिए ज्ञानी भेद बोलेंगे लेकिन उनको अनुभव करने में भेद है वो अंतराय रूप है, भेद है वो भेद विकल्प स्वयं अंतराय का कारण बंदा बनता है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानी अभेद स्वरूप में अभेद महिमा में डूब जाते हैं, वो भेद करके विकल्प में रुकते हैं नहीं है, ऐसी बात है। ये पहचान हुई ऐसा लिया है, देखो वितराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना, सब जगह निश्चय का उपदेश जहाँ चला है वो उपदेश स्वयं ही व्यवहार है, जितना भी कथन है वो व्यवहार है, निश्चय का स्वरूप तो अनिर्वचनीय है, वो वचन गोचर है
नहीं।
तथा अभी जो बात कही उसका एक और स्पष्टीकरण देते हैं कि तथा यहाँ व्यवहार से नर नारक आदि पर्याय ही को जीव कहा, व्यवहार से क्या कहा, ये मनुष्य जीव है, ये पशु का जीव है, एकेंद्रीय जीव है, ऐसा कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना, ऐसे पर्याय मिश्र पर्याय उसको जीव नहीं मान लेना, यानी मैं मनुष्य हूँ ऐसा मत मानना, मैं ज्ञान स्वरूप ही आत्मा हूँ ऐसा मानना है, मनुष्य हूँ ऐसा मानना नहीं है। यह पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, मनुष्यपना कहा, नारकेपना कहा, उसमें तो दो बात साथ में है, मिश्र पर्याय है, जीव पुद्गल का संयोग है। जो शरीर परमाणु है वो अजीव की पर्याय है, और अंदर जो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है जिसकी योग्यता भी मनुष्यपने की योग्यता है भाव में भी, वो जीव की पर्याय है। और दोनों संयोग को मनुष्य बोलने में, दोनों के संयोग को मनुष्य बोलने में आता है। वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसे ही को जीव जानना, अब सही ज्ञान करना है, सच्चा ज्ञान करना है उसको, तो जो जीव द्रव्य भिन्न है ज्ञान स्वरूप है उसको ही जीव जानना, शरीर को जीव मत जानना। शरीर को जीव नहीं जानना और शरीर की कोई साता असाता के पर्याय को भी जीव नहीं जानना, वो शरीर के पर्याय है, इसलिए जीव के पर्याय जीव की है, वो जीव के पर्याय नहीं है, इसलिए जीव नहीं है। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, जो शरीर संयोग में रहा है उसको भी जीव कहने में आता है। मनुष्य जीव, नरक के जीव, एकेंद्री जीव, एकेंद्री तो शरीर के पर्याय, पंचेंद्री जीव, पंचेंद्री शरीर के पर्याय है, सो कथन मात्र ही है। जैसे पड़ोसी से मामा मौसा कहता है ऐसा कहना मात्र है, वास्तव में नहीं है, पड़ोसी है, जीव है, शरीर है वो पड़ोसी है, तो पड़ोसी को चाचा भी कहते हैं, वो चाचा नहीं होता है, फिर भी कहते हैं पड़ोसी जान करके। ऐसे शरीर को जीव कहते हैं पड़ोसी जान करके, वास्तव में जीव नहीं है वो, स्पष्टतया परमाणु की, अजीव की, पुद्गल की पर्याय है। परमार्थ से मैंने वास्तविकता से शरीर आदि जीव होते नहीं ऐसा ही श्रद्धान करना, वास्तविकता से तो वो बात है कि वो शरीर आदि जीव हो ही नहीं सकता, पर श्रद्धा तो वास्तविक निश्चय का करना, श्रद्धा व्यवहार का जैसा कथन किया ऐसा श्रद्धा मत करना, वो तो आगे निषेध में बता दिया है। तथा अभेद आत्मा में, अब आगे की बात लेते हैं, पहले परद्रव्य की बात लिया, अभी अंदर में व्यवहार क्या होता है, व्यवहार दो, व्यवहार के कई स्तर है, परद्रव्य को आत्मा कहना, जीव कहना, वो भी व्यवहार है, राग को जीव कहना, वो भी व्यवहार है, एक समय के पर्याय को और गुण भेद को जीव कहना, वो भी व्यवहार है। सब व्यवहार अलग अलग स्टेज के हैं, अलग अलग स्तर के हैं, एक स्तर के नहीं है, एक स्तर के मान ले तो भी गड़बड़ हो जाएगी। जैसे जीव को शरीर रूप मानना तो झूठा है, लेकिन जीव को अपने गुण स्वरूप मानना वो झूठा नहीं है, तो भेद रूप व्यवहार है, तो उपचरित व्यवहार है, अभेद में भेद का उपचार किया है, उतनी सी बात है, लेकिन उसमें है ही नहीं। जैसे शरीर का अभाव है वैसे गुण का अभाव मान लिया जाए तो वस्तु शून्य हो जाएगी, क्या फिर से तो शास्त्र पढ़ने वाले को गड़बड़ होता है कभी कभी, क्या व्यवहार झूठा है, व्यवहार अभूयत हो अभूतार्थ है ही नहीं आत्मा में, वो तो दोनों व्यवहार सरखे नहीं है। जैसा शरीर का अभाव है ऐसा ज्ञानादि का अभाव नहीं है, जैसा राग का अभाव है ऐसा भी ज्ञानादि का अभाव नहीं है। तो जो ज्ञानादि को व्यवहार कहे वहां थोड़ा ख्याल रखने का है, क्योंकि तो एक सद्भूत होता है, एक असद्भूत होता है, असद्भूत को सद्भूत में भूल नहीं कर देना, सद्भूत को असद्भूत की भूल मत करना, वरना वो और गड़बड़ दूसरी हो जाएगी, ग्रहित हो जाएगा, फिर ये नहीं होना चाहिए। वो बात गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है, ये प्रवचन नवनीत में दूसरा भाग में आएगा, बहुत स्पष्ट किया है, इस विषय को ज्यादा स्पष्ट किया है वो प्रवचन। क्योंकि कोई निश्चयाभास में जाता है तो ऐसे भूल कर लेता है कि उतना निश्चय को पकड़ता है कि सद्भूत और सद्भूत व्यवहार को एक गिन करके समकक्ष में डाल देता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान भी व्यवहार हो गया, केवल ज्ञान भी साधक के लिए व्यवहार नहीं का विषय है। केवल ज्ञान हुआ उसको तो निश्चय व्यवहार का कोई वो तो उस भूमिका को अतिक्रांत करके सौ टच का सोना हो गया, उसके लिए तो कोई व्यवहार निश्चय का उपदेश ही नहीं है। लेकिन साधक को व्यवहार में केवल ज्ञान है वो व्यवहार नहीं का विषय है, पर्याय है इसलिए, लेकिन वो सद्भूत व्यवहार है। तो जैसे शरीर का अभाव है जूठा है, शरीर को अपना कहना जूठा है, ऐसे केवल ज्ञान को जीव को कहना उतना ही जूठा है, ऐसा है नहीं। ऐसा मानेगा तो सब जूठा हो जाएगा, केवल ज्ञान भी जूठा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। वो तो शुद्ध स्वरूप का प्रकाशन है, केवल ज्ञान है वो शुद्ध स्वरूप का प्रकाशन है अपने अवस्था में। हाँ, तो केवल ज्ञान है वो साधक के लिए सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, सद्भूत व्यवहार और सद्भूत नहीं है। और राग आदि और शरीर आदि जो है वो जीव का है, वो असद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, राग आदि भाव है, तो दोनों समकक्ष नहीं है। राग को अपना रूप जानना, अपना स्वरूप जानना वो झूठा है, शरीर को अपना स्वरूप जानना, विकल्प को अपना स्वरूप जानना वो झूठा है, लेकिन उतना ही झूठा केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान उतना झूठा नहीं है, तो उतना मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ये बात है। तो स्पष्टीकरण बहुत दिया है।
शरीर आदि और राग आदि,
हाँ वो विजातीय पदार्थ है, जबकि ज्ञान सजातीय पदार्थ है। केवल ज्ञान है वो सजातीय पदार्थ है, सद्भूत व्यवहार है, तो दोनों समकक्ष नहीं है। तो दोनों को एक सरीखे जूठा मानना वो गड़बड़ वाली बात है। तो बहुत स्पष्टीकरण दिया है गुरुदेव ने। क्या क्या प्रश्न था आपका? हाँ, उतना भिन्न नहीं है। जितना शरीर भिन्न है उतना राग भी भिन्न नहीं है। वो जीव की अशुद्ध अवस्था है, वो जीव की अशुद्ध अवस्था है। तो राग आदि मिटाने लायक है। क्या राग आदि है वो मिटाने लायक है, अवस्था पलट करके वितरागता करने लायक है, लेकिन अवस्था जीव की नहीं है ऐसा नहीं है। फिर भी वो भेद है तो व्यवहार भी है, और शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान आदि जीव की पर्याय है, वो भी व्यवहार है, लेकिन वो मिटाने लायक नहीं है। क्या केवल ज्ञान मिटाने लायक नहीं है? राग आदि अभाव करने लायक है, लेकिन केवल ज्ञान अभाव करने लायक नहीं है, ऐसा जानना है। ऐसा फर्क है, वरना तो गड़बड़ हो जाएगा। राग को भी मिटाओ, राग को भी खत्म करो, और वितरागता को भी खत्म करो,
ऐसा नहीं
वो गड़बड़ हो जाएगी। अब कहते हैं तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ है, समझाने के अर्थ किए हैं, सर्वथा भेद नहीं मानना। कथनचित भेद है तो समझाने के लिए उसका उपयोग किया, कथनचित भेद है, सर्वथा भेद है ऐसा नहीं है। कथनचित भेद भी रूप भी है, कथनचित अभेद रूप भी आत्मा है, तो समझाने में कथनचित भेद का उपयोग किया, समझाने के तरीका से। निश्चय से आत्मा अभेदी है, वास्तव में देखे तो अवलंबन का जो विषय है वो तो अभेद है, भेद है वो अवलंबन का विषय नहीं है। वस्तु स्वरूप वेद अभेदात्मक है। वेद जानने का विषय है, समझाने का इसका उपयोग, समझाने में उसका उपयोग होता है, पर अभेद है वो अवलंबन का विषय बनता है, इसका अवलंबन का उपयोग है। भेद है उसमें अवलंबन लेने का उपयोग उसका करना नहीं चाहिए। ऐसे दो बात अलग अलग है। निश्चय से आत्मा अभेदी है, उसे ही को जीव वस्तु मानना, वास्तविक रूप से अभेद का अनुभव होता है, भेद का अनुभव होता नहीं है, इसलिए ऐसा ही जानना। संगना संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, नाम पाड़ करके आत्मा ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा कहना वो नाम मात्र है। उसमें अनंत गुण है, संख्या बताया, वो भी कथन मात्र है। वास्तव में आत्मा एक ही, एक सत्ता है, अनंत गुणों के अनंत सत्ता नहीं है। कोई भेद प्रधानता में ऐसा भी कहेंगे, ज्ञान गुण में आनंद गुण का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व गुण में ज्ञान गुण का अस्तित्व नहीं है, सर्वगुण असहाय निरपेक्ष है, एक गुण की शक्ति को दूसरे गुण की शक्ति की अपेक्षा नहीं है, वो समझाने का तौर से कहते हैं। वास्तव में एक सत्ता में सभी गुण है, एक सत्ता में सभी पर्याय है, सभी पर्याय की भी सत्ता एक है, सभी गुण की सत्ता भी एक है, ऐसा रख करके वो बात है, वो अपेक्षा रख करके बात है, अपेक्षा छोड़ करके नहीं है। वरना जितना गुण उतना आत्मा हो जाएंगे, जितनी पर्याय उतना आत्मा हो जाएगा। कथन में कितना आवे, वो तो सत्संग में सब स्पष्टीकरण हो, कथन में तो कह करके छोड़ देना पड़ेगा, स्पष्टीकरण तो ऐसा नहीं मिलता है इतना। समझाने के अर्थ भेद है, अवलंबन के अर्थ भेद है, वो तो निकालना पड़ा है ना। समझाने के लिए भेद का ग्रहण किया और अवलंबन के लिए अभेद का ग्रहण किया, दोनों है तो दोनों का कार्यकारीपना अलग अलग है, ऐसी बात है। संगना संख्या आदि भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न नहीं है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, परमार्थ से ऐसा कोई भिन्नता नहीं है, एक ही सत्ता है, ऐसा ही श्रद्धान करना। श्रद्धान तो जैसा वास्तविक है, अवलंबन का विषय उसका ही श्रद्धान करना, तो समझाने के तरीके से कैसे उसका उपयोग किया, वो श्रद्धान का विषय उसको बनाना नहीं है, इसलिए व्यवहार का अनुसरण नहीं करना है, इसलिए न अनुसर्तव्यो व्यवहारो, वो बात किया, वही कारण है। आगे और स्पष्टीकरण दे,